ताल्लुक है तो वो तो एकदम से जो है झटके से ये बात बता सकता है। बहरहाल एक मरतबा जिंदगी को डिस्कस किया जाता है कि जिंदा होना यानी एक ऐसा मौजूद या एक ऐसा वजूद जो बायोलॉजिकली खसूसियात रखता है, जैसे सांस लेता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है, या जो है उससे अगर हम थोड़ा नीचे चले जाएं तो उसके पास सेंस है, मूवमेंट रखता है, एहसास और हिस है उसके पास। लिहाजा ऐसी तमाम जितनी भी मौजूदात हैं इसको हम जिंदा कहते हैं। किसी को हैवान की कैटेगरी में डालते हैं, किसी को थोड़े से ऊपर लाके इंसान की कैटेगरी में डालते हैं। लिहाजा जिंदगी और हयात एक ऐसी चीज है, इसमें दर्जाबंदियां हैं, कैटेगरीज भी हैं। कैटेगरीज यानी इस इनवान से कि अगर हम उस जिंदगी को देखें तो सबसे निचले तबके में भी हमें नजर आते हैं जिंदा चीजें हैं, एनिमल्स की शक्ल में, यही जो इस वक्त वायरस फैला हुआ है इस वायरस की शक्ल में, या जो है दीगर जो बैक्टेरियाज हैं उसकी शक्ल में, या दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइक्रोस्कोप के बगैर हमें नजर नहीं आती हैं, पावरफुल भी हो खासतौर पर। लिहाजा इसी तरह हम ऊपर चले जाते हैं, देखते हैं कि ऊपर की कैटेगरी क्या है। तो जमीन के अंदर इंसान नजर आता है जो जिंदगी के अतबार से सबसे ज्यादा जो है जिंदा तरीन मखलूकात में अफजल तरीन आला तरीन, जिनकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं जो दूसरे एनिमल्स में नहीं है, दूसरे जानवरों में नहीं है, वो इंसान मौजूद है। और अगर इससे हम ऊपर चले जाते हैं तो आखिर में जाके हम खुदाए सुबहान की वजूद मुकद्दस में पहुंचते हैं कि जिसके बारे में फरमाया हय्युल्ला यमूत, वो जिंदा है और कभी वहां पर अदम जिंदगी का कोई कंसेप्ट या मौत का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब मालूम ये हुआ कि इंसान एक ऐसा वजूद है जो जिंदा है और सबसे आला क्वालिटी रखता है जमीन के ऊपर, और अब वो जिंदगी गुजारना चाहता है, अपनी इस लाइफ को गुजारना चाहता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि तो इंसान की जिंदगी गुजारने का मतलब क्या, इंसान कैसे जिंदगी गुजारे, हयात का मतलब क्या होगा, और जिंदगी के बारे में क्या नुक्ते नजर होना चाहिए, इंसानी जिंदगी के बारे में क्या प्रस्पेक्टिव होना चाहिए। क्या सिर्फ हम बायोलॉजिकली इसको देखें, बायोलॉजिकली एनवान से सिर्फ इंसान को देखें, उसकी जरूरतों को देखें कि वो ग्रोथ कर रहा है और उसके बाद रिप्रोड्यूस करता है और उसके बाद मर जाता है, चला जाता है, या दूसरे क्या ये चीजें तो दूसरे मौजूदात में भी हैं, जो दूसरे एनिमल्स भी यही करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ग्रोथ भी कर लेते हैं एक लेवल तक, अपने लेवल तक करते हैं जाहिर है, और ये तो कॉमन चीजें हैं, हमें खाते पीते भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान बिनवान एक जिंदा और हयात, और उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इंसान में थोड़ी सी सलाहियतें ज्यादा हैं तो वो रहने के लिए अच्छी जगह बना रहा है, चलने के लिए सवारी बना रहा है, ये चीजें बनेंगी। लेकिन जो हयात और जिंदगी के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो फिर इक्वल नजर आएंगे, दोनों में कोई खास फर्क नहीं नजर आएगा। लिहाजा जरूरी है कि थोड़ी बहुत इतना जो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल भी नजर नहीं आएगा जब इसके अंदर जाएंगे दुनिया के फिलोसोफर इवन साइंटिस्ट और दुनिया के जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं वो इसके ऊपर इसीलिए सैकड़ों हजारों किताबें लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर डिस्कशन होती है, तो थोड़ा सा जो है परख लेते हैं, छान फटक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि इंसानी जिंदगी क्या है। इंसानी जिंदगी और दूसरे जो जिंदा जितने भी एग्जिस्ट करने वाली चीजें हैं उनमें क्या फर्क है, उसका फर्क जो है जिंदगी के मकसद और जो है अहदाफ और गोल्स और जो अहदाफ उसने अपने लिए रखे होते हैं उससे समझा जा सकता है। दीनी अगर नुक्ते नजर से अगर हमने देखना हो तो दीनी नुक्ते नजर से खुद इंसान की जिंदगी को भी मसलन मिनिमम अगर हम कह दें और बहुत ही एक मोटी बात कर लें तो दो कम से कम मरहलों में डाली गई है, ताकि दो किस्म के इंसान हो सकते हैं। दिखने में तो एक ही किस्म के हैं, जिंदगी गुजारने में दो किस्म के हो सकते हैं। दुनिया में जो जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी गुजारने में दो किस्म के हैं, देखने में सिर्फ एक ही है। कहा कि पहला जो स्टेज है वो एनिमल्स का स्टेज है, यानी एनिमल के लेवल की जिंदगी। कुछ इंसान हैं बेचारे, वो इंसान हैं, खिलकत उनकी अशरफ मखलूक हो चुकी है, आला क्वालिटी के हैं जितने भी एग्जिस्ट करने वाली चीजें उनमें, लेकिन जो लाइफ स्टाइल है उनका, जो लेवल ऑफ लिविंग है वो हैवानी है उनका। कुरान मजीद की बात बता रहा हूँ, सकलीन के हवाले से बात, और मसलन फरमाया अल्लज़ी खलक फसव्वाक फअदलक, फरमाया कि एक ऐसा वजूद हमने खल्क किया है, फसव्वाक फअदलक, यानी इसमें सलाहियतें मौजूद हैं, बिल्कुल जो है इक्वल सलाहियतों के साथ खलक किया है। इसके अंदर जितनी जरूरतें होनी चाहिए मिनहे से इंसान के अशरफ बनने के, वो इसके अंदर हमने रखी हुई हैं, और साथ साथ ये भी रखी है कि ये चाहे तो नीचे गिर सकता है, चाहे तो ऊपर आ सकता है। ये दोनों चीजें उसके अंदर फरमाया, ऊपर किस लेवल तक आ सकता है, नीचे किस लेवल तक जा सकता है। फरमाया नीचे इस लेवल तक कि वो हैवानों से भी बदतर हो सकता है। ऊपर किस लेवल तक जा सकता है, ऊपर के लेवल का अंदाजा ये इस बात से लगाया जा सकता है कि फरमाया देखें हमने इस इंसान को जब खलक किया तो इसके अंदर जो चीज हमने फूंकी, जिसको हम जिंदगी की अलामत कहते हैं, वह नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, हमने इसके अंदर अपनी रूह फूंकी है। मिन रूही अरबी जबान में ही मतलब मैं, यानी नी कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तानी ये नी ई, या भारती मसलन यूरोपी, ये जो ई है ये अरबी जबान के अंदर देखें तो ये निस्बत कहते हैं इसको, सेल्फ की तरफ अपनी तरफ आ रहा है। नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह इसके अंदर फूंकी है, मतलब मालूम होता है ये इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल या मेटेरियलिस्टिक एक वजूद नहीं है, बल्कि एक खुदाई वजूद है, मलकूती वजूद है। खुदा सुबहान व तआला की जब रूह उसमें अंदर फूंकी गई है तो मतलब खुदा तो रब समावात वल अर्ज है, मलकूत है, खुदाई है। मेटेरियलिस्टिक और ये चीजें तो इससे ऊपर मावरा है, ये मेटाफिजिक्स है, फिजिक्स नहीं रही है। तो लिहाजा मालूम हुआ कि इसका जो दर्जा और वो है बहुत ज्यादा ऊपर है। लिहाजा डिपेंड करता है कि ये इंसान किस तरह जिंदगी गुजारता है, किस लेवल पे जिंदगी गुजारना चाहता है, और इंसान आजाद भी है, चॉइस रखा है उसके सामने, गाइडेंस के रास्ते दिए बताए हैं सकलेन, खासकर सकलेन यानी वही और इस्मत के जरिए से बताया है कि भाई देखें ये रास्ते हैं, आपकी मर्जी है किधर जाना चाहते हो, नीचे गिरना चाहते हो या ऊपर जाना चाहते हो। जो स्टाइल यहाँ अपनाओगे, लिविंग स्टाइल जो भी आपका 70-80-90 साल का होगा, वही आपकी हकीकत होगी, वही हकीकतें यहाँ दिखाई न भी दें तो आपको जो अबदी जिंदगी है जहां पे आपने एक लामहदूद तादाद तक रहना, वहां पर ये हकीकतें आपके सामने आने वाली हैं खुली किताब की तरह। आप उसी शक्ल स्केच में डल जाओगे, उसी शक्ल सूरत में डलोगे जिस तरह की लाइफ तुमने यहाँ गुजारी होगी। लिहाजा जो है बहुत जरूरी है इस तरफ देखा जाए। इसके लिए बुनियादी तौर पर इस कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है कि जिंदगी क्या है और किस तरह इसको गुजारी जाए। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। अब देखें कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि बाज औकात बाज हम अदबियात को देखते हैं तो जब जिंदगी का कंसेप्ट सिर्फ बायोलॉजिकल होता है या दूसरे अल्फाज में डार्विनिज्म होती है तो फिर अशआर ऐसे बनते हैं कि वो अशआर फिर सबके लिए एक मशाल राह बन जाते हैं, खासतौर पर जो लोग दीन से ज्यादा करीब नहीं होते हैं। मसलन शायर कहता है जिंदगी क्या है अनासिर में जहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। वही बायोलॉजिकल लाइफ को यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही डार्विनिज्म की बात हो रही है। जिंदगी क्या है कहता है जिंदगी सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं कि अनासिर का जहूर है तरतीब, वही जो अनासिर है जो साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं, और मौत क्या है वही उन्हीं अनासिर का जो है डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना, यही ऐसी जिस्म की तरकीब और इसका डिस्ट्रॉय हो जाना क्या है, ये पूरी की पूरी जिंदगी की कहानी है। अब उर्दू अदब में जहाँ जो है ना हमारे शायर हजरात इल्मी एतबार से और दीनी नुक्ते निगाह से किसी इंसानी मसले को नहीं समझते हैं तो फिर वो शिकार हो जाते हैं इसी बायोलॉजिकल लाइफ के ऊपर और डार्विनिज्म और इस तरह की थ्योरीज के ऊपर। तो उनकी तरफ से जो बातें निकलती हैं, जो शायरी में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो भी इसी लेवल के अंदर रहती हैं। मसलन एक और शायर है, वो कहते हैं रात दिन उसका कलम मसरूफियात लगवियात है, या रात दिन उसका कलम मसरूफ है लगवियात है या लकलकियात है, चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। यानी वो उसके लिए हयात और मौत चार दिन की चांदनी, हयात चार दिन की चांदनी है और मौत उसके लिए एक अंधेरी रात है। इसके अलावा उसके पास कोई कॉन्सेप्ट, कोई परसेप्शन नहीं है, वो एक बिल्कुल ही निचले लेवल के बारे में सोच रहा है, तो बस चार दिन है जिंदा है तो बस ठीक है, आप जैसे मर्जी है ऐसे गुजारो, जैसे आज कहते हैं अपनी लाइफ जियो, अपनी मर्जी से जियो, अपने तरीके से जियो। आप आता एंटरटेनमेंट जो हमारी दुनिया है आप देखते हैं, खासकर जो हमारी साउथ एशियन एंटरटेनमेंट दुनिया है इंडिया पाकिस्तान की, उसको भी अगर आप देखेंगे तो जो कंसेप्ट हमें दिया जाता है वो ये कि भाई उसकी लाइफ है, उसको जैसी मर्जी है उसके जैसे जियो, मर्जी से जियो, अपनी पसंद के मुताबिक जियो, छोड़ो इस हुदूद को, बॉर्डर्स को, लिमिटेशंस को, वैला आखिरी, इस तरह की बातें हमें दिखाई देती हैं इसके अंदर, क्योंकि जिंदगी का कंसेप्ट चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, मौत का कंसेप्ट अंधेरी रात है, जिंदगी चार दिन की चांदनी है, अय्याशी कर लो, चार दिन की चांदनी, कोई लिमिट, कोई हुदूद, कोई कयूद, कोई बॉर्डर्स कुछ भी नहीं है, यू आर फ्री, जो कर रहे करो। तो ये कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट जो हमारे पास मौजूद है। लिहाजा ये जो कुरान और सकलेन की निगाह में, अइमा मासूमीन की निगाह में इस तरह की लाइफ के बारे में कहा, ये एनिमल से बदतर लाइफ है। मिसाल के तौर पर आते हैं कुरान मजीद में, कुरान मजीद के अंदर जो है मुशरिकीन और काफिरीन और मुनाफिकीन की लाइफ के बारे में बयान किया, वल्लदीना कफरू यतमत्तऊना वयाकुलूना कमा ताकुलुल अनआम। कहते वल्लदीना कफरू, जिन्होंने हकायक का इनकार किया है, सच्चाइयों का इनकार किया है, यानी तौहीद का इनकार किया है, तौहीद से रिलेटेड नबुवत, माआद, कयामत, इमामत, इन चीजों का जो मुनकिर है, वो उनकी लाइफ स्टाइल क्या होगा दुनिया के अंदर, जो 70, 80, 90, 100 साल गुजारेंगे तो वो किस तरह गुजारेंगे? यतमत्तऊन, अय्याशी में गुजारेंगे। एक वयाकुलून, खाते पीते रहेंगे, कमाता कुलुल अनाम, जैसे हैवानात करते हैं, एनिमल्स करते हैं, यानी उनकी जो लाइफ लिविंग लेवल है वो एनिमल्स का लिविंग लेवल है। ठीक है, रहते बड़े अच्छे घर में है, हो सकता है कि वो BMW की लेटेस्ट तरीन जो है जो मार्केट में गाड़ी आई है उस पर रहते हूँ, हो सकता है कि उसने जो सूट पहना हुआ हो वो बहुत ही एक अच्छे ब्रांड का पहना हुआ हो, सब कुछ बज़ाहिर ठीक हो, लेकिन कुरान की निगाह में, अहले बैत की निगाह में, यतमत्तऊन याकुलून कमा ताकुलुल अनाम, अनाम कहते हैं भेड़ बकरियों को या जानवरों को, तो कह रहे हैं कि ये जो लिविंग है ना, स्टेज है आपकी लाइफ का, ये एनिमल्स की जिंदगी है। ठीक है, आप जैसे भी गुजारें, एनिमल से आगे नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बाज लोगों के बारे में कुरान मजीद कहता है उनको छोड़ दो भाई, उनके अपने हाल पे छोड़ो, फजर हम यखुज़ु व यलअबू हत्ता युलाकू हम यौम अल्लज़ी युअदून। मसलन अल्लाह के रसूल से कुरान मजीद मुखातब हो रहा है, या अल्लाह सुबहान व तआला मुखातब हो, कहते ए रसूल खुद को तकलीफ में मत डालो, ये सुनने वाले लोग नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं है जो अकल इस्तेमाल करें, ये आप अपने आप को आपसे बड़ा दानिश्वर समझते हैं, ये समझते हैं कि इस रसूल से ज्यादा बड़े दानिश्वर हमें, ज्यादा इनसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी है, ज्यादा हम इससे ज्यादा हम प्रोफेशनल हैं, ज्यादा जो है हम एक्सपीरियंस रखते हैं, वगैरह वगैरह। आपको तो मजाक उड़ाते हैं, आप इनके पीछे अपना अपनी लाइफ का सरमाया लगा, छोड़ो इनके अपने हाल पर, फजरूहुम यखुज़ू, छोड़ दो इनको, यलअबू खेलकूद में लगे रहे, यानी वो जो लिविंग स्टाइल है उसको खेलकूद कहा कुरान ने। हत्ता युलाकू, कब तक ये खेलकूद जारी रहेगा? यहां तक कि युलाकू यौमहुल्लज़ी युअदून, उस वक्त तक, वो जो वादा हमने किया है कयामत का या मौत का, उस वक्त तक ये इसी लाइफ स्टाइल में रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ज़हमत ना निकालें इनके ऊपर। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने गवर्नर हैं उस्मान इब्ने हुनैफ को एक खत लिखते हैं, उस खत में एक इबारत, एक जुमला है, बड़ा प्यारा है, फरमाते हैं फमा खलक्तु लियश्तगलनी अकलु तय्यबातिकल बहीमा المربوط همها علفها او مرسل شغلها تخم। फरमाते हैं इब्ने हुनैफ, अब ये बात तो वाज़े है कि अब हम इसलिए तो पैदा नहीं किए गए हैं कि हैवानों की तरह खाएं पिए, सारी फिक्र और जद्दोजहद और कोशिश सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ तक महदूद रखें। मैंने अपने अल्फाज में तर्जुमा किया है, सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ को हम इनफ समझें और सारी कोशिश, पूरी लाइफ इसी के पीछे लगे रहें, रिप्रोड्यूस करें एक, क्योंकि मैं भी किसी का जो है ना रिप्रोडक्शन हूँ, किसी ने मुझे जो है प्रोड्यूस किया है, अब मेरा काम है रिप्रोड्यूस करना, आगे मजीद प्रोडक्शन का, उसके बाद सिर्फ उसी के पीछे लगा रहना है, उस वो भी आगे यही करेगा, वो भी आगे यही करेगा, ये एनिमल्स की लाइफ है। हजरत फरमाते हैं उस्मान इब्ने हुनैफ, होशियार रहो, गड़बड़ मत करना, करप्शन मत करना, बड़े होशियारी के साथ चलना, ये जहन में रखो। अब इसलिए ये लाइफ इसलिए नहीं है कि जो है ना हम हैवानों की तरह खाएं पिए और सारी फिक्र और सोच सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ तक महदूद रखें और डार्विनिज्म की आइडियोलॉजी के साथ चलते रहें। खबरदार, इस लेवल की जिंदगी नहीं गुजारनी है। इब्ने हुनैफ, ये नाजुल बलागा है जो मैंने अर्ज किया। इंसानी जिंदगी का दूसरा जो लेवल है वो ये है कि बायोलॉजिकल लेवल से ऊपर जाके हम जिंदगी गुजारें, जिंदगी को अनासिर का जहूर तरतीब और अज्जा का फना होना न समझा जाए, बल्कि हम ये कहें मौत पाकर जावेदानी हो गई हस्ती तेरी, मौत ने पैगाम तेरा कर दिया है सरमदी। ये हमारे मरहूम, जैसे मुझे बताया गया है, दोस्तों ने अपडेट किया इस मरहूम के लिए कि जजा हम खैर जजा, ये इसने अपनी जिंदगी वाकई जो है बायोलॉजिकल जिंदगी नहीं गुजारी है, सिर्फ रिप्रोड्यूस करते नहीं रहे हैं, बल्कि मौत पाकर जावेदां हो गए हैं। ये यकीन है हमें कि जिस तरह के मैयारात और पैरामीटर्स हमें बयान किए गए हैं कुरान इतरत ने हमें बयान किए हैं उसके हिसाब से हम ये कहते हुए बगैर कोई झिझक महसूस नहीं करेंगे कि हमारे इस मरहूम ने जो जिंदगी गुजारी है वो एक ऐसी जिंदगी थी कि वो जावेदा है। जावेदा इसलिए है कि वहां जिवार आइमा में, जिवार सालिहीन में है, जिवार मुत्तकीन में है। उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो अजीज हैं, जैसे मेरी सिस्टर इमने जो अपडेट्स की हैं या मुगीस भाई ने जो अपडेट्स की, उससे मालूम होता है कि वो उनके लिए तड़पते हैं, वो उनके लिए आज भी एहसास रखते हैं। सिर्फ रिश्ते की बात नहीं है, उसकी खदमात की बात हो रही है, उसकी उन तकलीफों की बात हो रही है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए वो निकालते रहे हैं, दूसरों के लिए जीते रहे हैं, दूसरों के लिए तड़पते रहे। ये क्या कुरान नहीं बताता कि दूसरों के लिए तकलीफ में जाना कितनी बड़ी सिफत है? ये क्या सीरत आइम्मा में से नजर नहीं आता? बस हमसे क्या कहा है भाई, कोशिश करो मैक्सिमम कुरानी जिंदगी गुजारो, सीरत अहले बैत के जो प्रैक्टिकल करके दिखाएं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। इस मरहूम ने इसीलिए कुरान मजीद के अंदर है, अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तवून। भाई देखो भाई, मोमिन की जिंदगी और मोमिन का जो लिविंग लेवल है, लाइफ स्टाइल है, वो और काफिर का जो लाइफ स्टाइल ना, वो इक्वल नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि आज मोमिनीन काफिरों की लाइफ स्टाइल की कॉपी पेस्ट करने लगे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और बच्चों को भी वही लिविंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल सिखाने लग गए हैं, ये अलग मौजू है। लेकिन हमारे नजदीक अल्लाह फरमाते अफमन कान मोमिनन, ये देखें दुआए कुमेल में ये आयत मौला ने बयान की है। अगर याद आ रहे हो आप लोग दुआए कुमेल सुनते हैं माशाल्लाह से, तो दुआए कुमेल के अंदर भी जब पढ़ते पढ़ते हम पहुंचते हैं एक जगह पर, तो ये आयत आ जाती है अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तवून। भाई इक्वल हो सकते हैं, दोनों की तर्ज फिक्र मुख्तलिफ है, दोनों की जिंदगी गुजारने का तरीका मुख्तलिफ है, इंपॉर्टेंस और क्या कहते हैं प्रायोरिटीज मुख्तलिफ है। लिहाजा ये जिंदगी को चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह नहीं गुजारते हैं ये लोग, बल्कि मौत को पाकर जावेदानी हो गई हस्ती तरी, इस तरह गुजारते हैं। मौत ने पैगाम तेरा कर दिया है सरमदी अबदी दायमी, उस तरह जिंदगी गुजारते हैं। इनकी जिंदगी एक बामकसद जिंदगी होती है, हैवानी जिंदगी से बहुत ऊपर होते हैं, इंसानी जिंदगी गुजारते हैं। मर भी जाते हैं तो वो इंसानों के दरमियान जिंदा रहते हैं, मर भी जाते हैं तो उनके अंजाम दिए हुए काम जो है इंसानी वजूद के अंदर नजर आते हैं। कि जैसे जो है इस मरहूम के बारे में बताया गया, मैं हालांकि ये मुमकिन है अनयूजुअल लगे आप लोगों को इस अंदाज में गुफ्तगू करना, इस मरहूम के बारे में जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूं, उनकी जो खिदमात हैं उन खिदमात के नताइज हमें नजर आते हैं आज इस सरजमीन में, जहां पर कुरान इतरत के पैगाम को अगर फैलाने के लिए हम ही लोगों ने जाहिर है कि हम इंसान हैं, इंसानों ने ही फैलाना है, जनरेशन आएंगी जनरेशन चलेंगी, इमाम बारगाह बनेंगे, सेंटर्स बनेंगे, उलमा को बुलाएंगे, जहमतें निकालेंगे, जैसे कि इस तरह अभी आपने मजलिस रखी है यही होगा ना। तो इसके लिए जो ग्राउंड बनाते हैं जो लोग, इसके लिए जो फैसिलिटेट करते हैं जो लोग, सर्विसेज देते हैं जो लोग, वो जाहिर है अजर अजीम पाते हैं। और इस मरहूम का ताल्लुक ऐसी ही से है, इसी चीज से ही है जो हमें नजर आता है। ये फिर मुझे यहाँ शेर याद आ रहा है, और आज पता नहीं क्या दिन है कि कुछ अशार मुझे ज्यादा याद आने लगे, हालांकि बड़ा अरसा हुआ कि जो याद थे अशार, जिन्हें याद रखना भी चाह रहे थे उसे भी हम भूल चुके हैं। मौत क्या है सूरत जाहिर का छुप जाना कहीं, मौत क्या है सूरत जाहिर का यही जिस्म का छुप जाना कहीं, लेकिन जहन में रखा जाए जो आला काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उससे हो जाते हैं, लेकिन जो हर शायर मुबी मुबी यानी रोशन मजीद खुल जाते हैं। शायर क्योंकि जाहिर है शायर थे तो उसने अपने आप को डाल दिया वहां पर, लेकिन ये हर किसी के लिए है। ऐ बसा अलामा इकबाल कहते हैं, ऐ बसा शायर की बाद अस मरगजा, कहते शायर मरने के बाद जिंदा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे इस तरह जिंदगी जी के जाते हैं, मरने के बाद वो जिंदा हो जाते हैं, मजीद जिंदातर हो जाते हैं। और ये उस वक्त ही मुमकिन है कि ईमान की जिंदगी जी जाए, ये उस वक्त मुमकिन है कि उन सिफात की तरफ तवज्जो दी जाए जो जिंदगी का इंसानी तर्ज सिफात है या इंसानी तर्ज जिंदगी और लाइफ स्टाइल है, और खास तौर पर जो कुरान और सुन्नत और कुरान और अहले बैत और वही और असमत ने हमें बताया है कि जिसमें एक अहम तरीन चीज इंतहाई अहम है, वो चीज सिलाए रहमी है। इंशाल्लाह मैं दो जुमले सिलाए रहमी के ऊपर बयान करूंगा, और उससे पहले सिर्फ मौत के बारे में थोड़ी सी, अगर जो सामीन मुसलसल मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि मौत के हवाले से हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है। फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वो जो मर चुका इंसान के लिए, जीता है वो जो मर चुका इंसान के लिए। मौत असल में जिंदगी का खुलासा और निचोड़ है। मौत किसी फना और नाबूद होने का नाम नहीं है। जिस्म फना हो जाता है, इंसान फना नहीं हो रहा होता। कहीं पर भी कुरान में देखें, मौत को फना, नाबूद होना, मिट जाना, खत्म हो जाना, अदम हो जाना, ऐसा कुछ भी कहें पर जो है बयान नजर करते हुए नजर नहीं आता है। बल्कि मौत को कहा है ट्रांसफर होना है, टेम्परेरी लाइफ से अबदी लाइफ की तरफ। ट्रांजिट जो पीरियड यहाँ गुजारा 70-80-90 साल से, अब परमानेंट जो डिस्टेंस था हमारा वहां पर जाना है। इसलिए कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजून, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजून। वहां से आए थे टेम्परेरी पीरियड के लिए, ट्रांजिट पीरियड में बैठे हुए हैं, राजून करना है, वापस चले जाना है। वापस चले जाना असल में रहायशी वहां के हैं, रहने वाले हम वहां के, तो राजून करके हमने वहां पर चले। लिहाजा मौत जिंदगी का खात्मा नहीं है बल्कि आगाज जिंदगी है। अब फर्क करता है यहाँ पर जो लिविंग स्टाइल रखा है, जो लाइफ का जो लेवल यहाँ रखा है, वहां पर जाएंगे तो उसी लेवल के हिसाब से जीना पड़ेगा, उसी लेवल के हिसाब से रहना। यहाँ अगर एनिमल के स्टाइल में रहे हैं तो वही बायोलॉजिकल लाइफ से ऊपर चले ही नहीं गए तो वही रहेगा। अगर उससे हम ऊपर चले गए हैं, नफाक तुफी ही मिनरू ही, मलकूती तर्ज जिंदगी रखी है, इलाही तर्ज जिंदगी रखी है, तो जाहिर है उस सूरत में वहां पर वही होगा। यानी हम जो वहां पर जाएंगे एक अबदी जिंदगी के अंदर, तो फिर इरफानी और नूरानी और मलकूती और खुदाई जिंदगी होगी हमारी। उसी को बहश का नाम दे दें आप, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जवार रहमत में जगह मिलना, जवार मोमिनीन में जगह मिलना, बरजख में जवार अइमे तय्यबीन व ताहिरीन में जगह मिल जाना, ये सारे जो अनामीन है ये खुलासा हो जाते हैं उसी नफख्त फीही मिन रूही के अंदर। बहश्त बरी में जगह मिल जाना, बहश के जो है आला तरीन मकामात हासिल होना, ये सारे खुलासा करते हैं उसी एक चीज की तरफ से। लिहाजा यहाँ अगर हमने अच्छी सिफात के साथ जिंदगी गुजारी है, कि उनमें से एक अहम तरीन सिफत जो हमारे मरहूम में भी मौजूद थी और अइमा ने ताकीद की है, कुरान मजीद में भी बहुत ज्यादा ताकीद की है, वो सिले रहमी की है। देखें मेरे पास जो चंद मिनट रह चुके हैं उसमें तेजी के साथ में समेटना चाहूंगा। सिले रहमी, थोड़ी सी अगर इसके बैकग्राउंड को फिलोसफिकल उसको देखना चाहते हैं तो मैं दो जुमले कहता हूँ, ज्यादा डिस्कशन का वक्त नहीं है और उसके दीगर पहलू की तरफ जाते हैं। देखें इंसानी मुआशरा जो हमारे हमारा अकीदा है ना कि हमने ग्लोबल एक सोसाइटी तश्कील देनी है। कुरान की निगाह में खुदा चाहता है पूरी कायनात एक सोसाइटी में डल जाए, एक नेशन हो जाए, पूरी सोसाइटी जो है एक किस्म के सिस्टम में आ जाए। कुरान बेशक ये चाह रहा है ना, खुदा दर हकीकत 124,000 पैगंबरों को इसीलिए भेजा था, 12 मासूमीन इसीलिए आए, तशरीफ लाए। 12वें सरकार अगर पर्दे गैब में है तो इसलिए कि अभी ग्राउंड तैयार नहीं है कि एक पूरी ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी बनाई जाए, एक कल्चर हो, एक किस्म की सकाफत रखते हों। दीनी सकाफत है, इलाही सकाफत है, वही की सकाफत है, इस्मत की अता करदा सकाफत है, एक नूरानी सकाफत है, खुदाई मलकूती जो भी बरजखी बहेश्ती जो भी नाम दे दें आप उसको, बात वही एक ही है, एक ही सकाफत और एक ही सिस्टम के अंदर हम जिए। लिहाजा उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के पहलू, उनमें से एक सिले रहम है। सिले रहम एक बड़े इंसानी सोसाइटी और माशरे की तश्कील के लिए जरूरी है कि छोटे छोटे लेवल से इंसानों के रिश्ते मजबूत होते जाएं, चाहे वो रिश्ते जो है सिले रहम के इनवान से मजबूत हो रहे हों, चाहे अकीदे के इनवान से मजबूत हो रहे हों, जबान के एतबार से भी मजबूत होते हों पॉजिटिवली अगर लिया जाए, कौमियत के एतबार से अगर पॉजिटिव नेशनलिज्म की तरफ न चल जाए, तो रेसिज्म और नस्ल परस्ती की बात आ जाए उस तरफ न चला जाए, तआरफ़ की हद तक, पहचान और आइडेंटिटी की हद तक रहा जाए, तो ये जो जोड़ है पूरे इंसानों के दरमियान कि वो एक इकाई में डल जाए। और एक इंसान कहते हैं सोसाइटी की जो एक इंसान है वो एक इकाई होता है, और ये कई इकाइयां मिलती है तो एक ह्यूमन सोसाइटी क्रिएट हो जाती है। यही सोशियोलॉजी में हमें पढ़ाते हैं, जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है, और दुरुस्त भी पढ़ाते हैं यहां तक ये बात ठीक है। लिहाजा सिले रहम एक ऐसा जज्बा कि जिसके सबब छोटे छोटे माशरे तश्कील पाते हैं और ये मिलकर एक अजीम इंसानी माशरे में डलते हैं, वही अरिस्टोटेलस के यूटोपिया में डलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न इस्तलाह इस्तेमाल किया है, वही अरिस्टोटेलस की यूटोपिया है, या मुसले अफलातूनी है, अफलातूनी जो आइडियल एक कंसेप्ट था वो है, या फिर ये कि अगर हम अपनी इस्तलाहात को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विलायत इमामत की तश्कील करदा आलमी इंसानी सोसाइटी है। इस सोसाइटी को कैसे बनेंगे? सिले रहम के जरिए से। امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحم کے سبب شہر اور خاندان آباد ہو جاتے ہیں. ایک یہ تو بتایا ظاہری ہیومن سوسائٹیز کی تشکیل کے لیے. آگے فرماتے ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں, اگر صلہ رحمی ہوگی تو بلا نہیں ہوگی, بلائیں ٹل جائیں گی. انسان یہ اب گیا یہاں تک آ گیا ہماری اس دنیا کے لیے, کیونکہ ہم ہیں پہلے دیکھتے ہیں پہلے ادھر مل جائے بعد میں پھر ادھر کا دیکھا, کیونکہ ادھر پڑے ہوئے ہیں نا ابھی اس وقت. ہم لوگ ٹیمپریری پیریڈ کو سمجھتے ہیں پرمنٹ ہے, تو ہم کہتے ہیں. تو امام نے بھی ہیومن سائیکی کو دیکھ کر کہا کہ شہر آباد ہوتے ہیں, بلائیں ٹل جاتی ہیں, پھر فرمایا دیکھو پرمنٹ لائف میں جاؤ گے نا انسان کا حساب و کتاب آسان ہوگا. یعنی یہاں جو 70-80 سال گزار کے وہاں جا رہے ہو نا, تو اس کا حساب و کتاب تو دینا پڑے گا نا, آڈٹ تو وہاں پر ہوگا, اس وقت وہ آسان ہو جائے. تو ہمارے جو مرحوم تھے وہ صلہ رحمی کے معاملے میں ماشاءاللہ ان کی بڑی زبردست قسم کی خدمات اور صفات کی, جیسے کہ دوستوں نے بیان کیا, اور ایک مومن کی آئیڈینٹی اور شناخت اور نمایاں ترین صفت کو صلہ رحم قرار دیا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا, رشتہ داروں کا خیال رکھنا, رشتے کا احترام کرنا, رشتے کے لیے تڑپنا, رشتے کے لیے قربانی دینا, رشتے کے لیے کام آنا, رشتے کے بارے میں ہمیشہ سوچنا, رشتے کے درد کو اپنا سمجھنا, اگر رشتوں کے درمیان تھوڑی سی مشکلات اور پرابلمز آ جاتی ہیں تو اس کو نگلیکٹ کرنا, نظر انداز کرنا, بڑی چیز ہوتی ہے تو چھوٹی کر کے دکھانا, یعنی نگیٹیوٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر کسی رشتوں کے درمیان کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, ہیومن ہے انسان ہے, تو اس کو چھوٹا کر کے دکھانا, راہی کو پہاڑ مت بنانا, الٹا پہاڑ کو راہی کر کے دکھانا, تاکہ پرابلم ختم ہو جائے, پرابلم نہ رہے, رشتوں کے درمیان دراڑیں نہ آ جائیں, یہ صلہ رحم ہے. اور قرآن مجید کی سورہ غالباً رات کی آیت نمبر 21 ہے, فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, یعنی وہ لوگ جو اللہ نے جن رشتوں سے, یعنی یہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یعنی رشتوں کے ساتھ بنا کے رکھنے کا, صلہ رحمی کرنے کا, وہ جو اس صلہ رحمی کی پابندی کرتے ہیں, رشتوں کو بنا کر رکھنے کا جو حکم دیا ہے اسے بنائے رکھتے ہیں, در حقیقت وہ خدا سے خوف کھانے والے بندے ہیں. یعنی وہ بندے جو جن کی صفات بیان کی کہ وہ یخافون اللہ ہیں, ہمیشہ خدا پیش نظر ہوتا ہے ان کو, ہمیشہ قیامت ان کے پیش نظر ہوتی ہے, یہ اعلیٰ کوالٹی کے انسان ہیں, ان کا لیونگ جو لیول ہے وہ بہت اونچا ہے. اسی طرح سورہ نساء میں ہے, بس ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ اور سپیڈ میں ہم جا رہے ہیں. سورہ نساء کے اندر فرمایا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے, فرمایا یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کی ایگزامپل کیا ہے, کیسے ڈرتے ہیں, کہاں سے پتہ چلے گا یہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے, بہ تساءلون بالارحام, کیونکہ رشتوں کا ارحام کا خیال رکھتے ہیں, ارحام کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں, ارحام کے درمیان ناچاکی پیدا ہونے نہیں دیتے ہیں. بس یہ کون ہے, اتق اللہ ہے یہ لوگ. نظر لگا لیں صلہ رحم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. صلہ رحم کے بارے میں فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ ادھر کی عمر میں اضافہ کرے گا کہ یہ تو اتنا زیادہ, اگر اللہ فرمائے برزخ کی عمر اور یا تو ہم کہیں گے خدا برزخ کی دے دو, ادھر تو پتا نہیں کتنی اضافہ ہوں گے, 100 سال جیئیں گے نا برزخ میں, ادھر جو کروڑ ارب انلمیٹڈ ہم نے لائف گزارنی ہے وہ ادھر زیادہ مل جائے, ادھر زیادہ فیسلیٹیٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے. فرمایا کہ صلہ رحمی سے دیکھیں سوسائٹیز آباد ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس میں ہر لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, عمر زیادہ ہوتی ہے, گھروں کو آباد کرتا ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, آخرت میں حساب و کتاب کا مدعا. دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک, دار فنا سے دار بقا تک پورا صلہ رحم کی ایک تسلسل اور ایک تعلق موجود ہے. اور پروردگار عالم سے 10 دعا ہوتے ہیں, پروردگارا ہم سب کو جب تک دنیا میں ہیں صلہ رحم رکھنے, پاسداری کرنے اور خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما. اور ہمارے یہ مرحوم جعفری صاحب کہ پروردگارا یہ صلہ رحمی کی صفت رکھتے تھے, ان کے ارحام آج اکٹھے ہیں یہاں پر, ان کے ارحام اسی وجہ سے جو ہے آج اکٹھے ہو کر ان کی یاد میں مجلس ترحیم کر رہے ہیں. پروردگارا اس کا تمام اجر و ثواب ان کی روح کے لیے ایصال فرما. یقیناً پروردگارا تیری رحمت میں وہ موجود ہیں, تیری رحمت ان کے شامل حال ہے. پروردگارا رحمت خاصہ اپنے شامل حال فرما. پروردگارا رشتے اور نعتوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر ارحام سے نکال کر عقیدتوں میں شامل کر دے, और अकीदों के मुताबिक जो रिश्ते बनते हैं, आइडियोलॉजिकल जो बॉर्डर्स और सरहदें और रिश्ते हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा, कि जिस रिश्ते की वजह से आप देखते हैं कि जनाब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील जब कूफे में तशरीफ लाए और क्राइसिस के शिकार हो गए इंतहाई, और उस क्राइसिस में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि रिश्तेदार कोई हजरत मुस्लिम का कूफे में हो, यानी अरहाम में से कोई रिश्तेदार हो, लेकिन अकीदती रिश्ते वहां पर मौजूद थे। वो रिश्ते जाहिर खून सफेद हो, या जो उर्दू में हम कहते हैं लाल खून सफेद हो गया, लेकिन पूरे कूफे का ये हाल नहीं था। एक मुअज्जमा खातून थी तारीख ने जिसको तो आ कहा, इस मुअज्जमा खातून ने उसी अकीदे के रिश्ते के पेश नजर हजरत मुस्लिम के बारे में जब उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है तो अपने घर के दरवाजे खोल दिए, कहती है मुस्लिम मैं तुम पे सदके जाऊं, मैं तुम पे कुर्बान हो जाऊं, मेरे अजीज इमाम के तुम नुमाइंदे हो, सफीर हो, और तुम्हें बिल्कुल तन्हा और अकेला कर दिया है, यारो यावर सब छोड़ के चले गए, इतने बेवफा बन गए ये लोग, बुलाया तुम्हें तुम्हारे गिद कटे हो गए, मुश्किल आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो सबने छोड़ दिया, खून सफेद हो गया सबका मुस्लिम, लेकिन तू आका खून सफेद नहीं हुआ है। ये ज़ईफ़ा नातवान अगर चीज के इसका बेटा भी जो है वो दुश्मन का अहलकार है, लेकिन मैं दुश्मन के अहलकार नहीं हूँ, मुस्लिम आओ मेरे घर में, आओ मेरे अजीज घर में लेके जाती है, घर में ले जाती है, मतलब क्या खुद को खतरे में डालती है ये मुअज्जमा बीबी, ये खातून अपने आप को मुश्किलात में डाल रही है, अपने आप को हुकूमत जालिम तरीन हुकूमत के मुकाबले में खड़ी कर रही है, कुर्बानी दे रही है हजरत मुस्लिम के लिए और मुस्लिम को लेके, और आपको मालूम है कि उसके बाद क्या जो है सारा सिलसिला बन गया। परवरदिगारा हमें अरहाम के रिश्ते, खून के रिश्ते, इसी तरह जो ईमान का रिश्ता है, जो अकीदत और अकीदे का रिश्ता है, इसके पासदार बनने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जितने भी मरहूमीन जो इस दुनिया से चले गए, हाजरीन के मरहूमीन, खासकर जो है हमारी बहन इरम जो है जाफरी के जो मरहूमीन है, और खासकर जो है मरहूम मकबूल जिसके इसाल सवाब के लिए सूरह यासीन की तिलावत की गई, मरसिया और मनकबत सुनी गई, परवरदिगारा जो जिक्र कुरान और इतरत सखलेन हुआ, परवरदिगारा इस सब के सवाब को उनकी रूह के लिए इंसाल फरमा। परवरदिगारा जिस तरह उन्होंने इस खानदान में सिले रहमी, मेहमान नवाजी और दूसरों के लिए कुर्बानी और ईसार की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है, नस्ल दर नस्ल इस मिसाल को इस खानदान में जारी और बरकरार फरमा। परवरदिगार इस खानदान के जितने भी अफराद हैं उनको कुरान और इतरत के साथ मुतमसिक रहने और उनकी मारिफत अता फरमा। परवरदिगारा सिले रहमी के इस तसलसल को इस लेवल तक पहुंचा दे कि इससे फिर एक इंसानी सोसाइटी की तश्कील की तरफ कदम बढ़ाएं, और उसके बाद एक ग्लोबल जो साहेबुल असर व जमान की उस हमारी अरमानों वाली आरजुओं वाली जो सोसाइटी है परवरदिगारा, उस सोसाइटी तक मुत्तसिल फरमा। ए कादिर मुतलक तेरे कब्जे कुदरत में हर चीज है, इस वक्त दुनिया में तेरे बंदे जो तू उनका राजी को खालिक को मालिक है, जो भी दीन व मजहब अकीदा व अकीला रंग व नस्ल है तेरे बंदे हैं परवरदिगारा, इस कोरोना की वबा से परेशान है परवरदिगारा, इस वबा को हमसे दूर फरमा, अपने बंदों से इस वबा को दूर फरमा। परवरदिगारा मशरिक व मगरिब शुमाल व जनूब में जो भी बीमार हैं इस कोरोना की वजह से उन्हें शिफाए आजला व कामिला इनायत फरमा। परवरदिगारा हम सब गुनाहगार हैं खताकार हैं, परवरदिगारा हम सब के गुनाहा ने कबीरा व सगीरा से दरगुजर फरमा। मरहूम व मगफूर को जवार अइम्मा में, जवार अहले बैत में, जवार मुत्तकीन व सालिहीन में, जवार सिलसिलतुल अरहाम में जगह इनायत फरमा। आलम बरज़ख से लेकर यौम क़यामत तक शफाअत मुहम्मदिन व आल मुहम्मद नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए वक्त निकाला,
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह क्योंकि आगे एक दर्स है तो वगैरह मैं आपकी मजलिस में मजीद कंटिन्यू रहता, क्योंकि फौरन अभी अगले 15 मिनट में एक और दर्स है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा चलूँ। तमाम जो बहन भाई हमारे यहाँ पर, बुजुर्ग हमारे यहाँ पर बैठे हैं, खासकर मुबारक अंकल अगर सुन रहे हों سب کے لیے ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ سب لوگوں کو آباد رکھے جہاں پر بھی ہیں. ماشاءاللہ آپ کی ارحام اور آپ کے عزیزوں میں سے بعض کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور اس تعلق کی وجہ بھی عقیدتی رشتے کی وجہ سے رہا ہے, وگرنہ میں ٹھہرا ایک ہمالیہ کے اور کیٹو کی پہاڑوں میں رہنے والا شخص اور آپ ٹھہرے یہاں یورپ میں, تو یہ تو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. لیکن اس فاصلے کو اگر کم کیا ہے کسی چیز نے اور جوڑ دیا ہے تو وہ عقیدہ اور عقیدے کا رشتہ ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے اچھے ماشاءاللہ بزرگوں کی اچھی جو بنیاد انہوں نے رکھی تھی آج وہ کتنے اچھے تناور درخت بن چکے ہیں, اور کس جذبے کے ساتھ یہاں یورپ میں رہتے ہیں. اور بھی یہاں پر لائف اسٹائل ہو سکتے تھے, لیکن ان کی لائف اسٹائل وہی ہے جو بزرگوں نے جس کی بنیاد ڈالی تھی. تو ہماری آرزو ہے کہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہے, نسل در نسل قرآن و اطرت اور ثقلین کے خادم جو ہے اس نسل میں پیدا ہوں اور اسی طرح خدمت کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آمین, شکریہ آپ کا بھی. میں درخواست کرتا ہوں ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں غازی چچا کے لیے. غزل فر علی جعفری ابن محمد علی جعفری اور تمام مرحومین ہمارے خاندان کے اور تمام مرحومین اسلام کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. صلوات بر محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you everybody. Khuda hafiz. Fi aman Allah. Please remember us in your prayers. Thank you.